नमस्कार भारत, 2 अगस्त दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फदल। अमरीकी विदेश मंत्री ने कहा, उत्तर कोरिया से होनी चाहिए बात।
We are not your enemy. We do not seek a regime change. We do not seek the collapse.
देखेंगे एक मराठी गाने की तर्ज पर बना गाना, पाकिस्तान में क्यों हो रहा है लोकप्रिय।
टिम्मू, हमें आप पे भरोसा, सही था। अपनी मेहनत पे आप फिर अड़ गए। पनामा से देखो सारे गड़ गए। अदालत में केस हुआ, गोल गोल। टिम्मू यहाँ सारे बोले मीठे बोल। टिम्मू, हमें आप पे भरोसा, सही था।
चर्चा होगी कनाडा के एक सी फूड फेस्टिवल की, जहाँ भारतीय रसोइयों ने मचाई है धूम। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेती से। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि उत्तर कोरिया उनका दुश्मन नहीं है। टिलरसन का ये बयान उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच चल रही तनातनी के बीच आया है। टिलरसन ने वॉशिंगटन में कहा कि उनका देश उत्तर कोरिया के साथ बातचीत करना चाहता है और किम जोंग उन को सत्ता से बेदखल करने का उसका कोई इरादा नहीं है। अफगानिस्तान के हेरात शहर में कल शाम एक शिया मस्जिद में हुए धमाके में कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई है। धमाके में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हेरात के गवर्नर के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि आत्मघाती हमलावर जवादिया मस्जिद में घुसा और नमाज पढ़ रहे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके बाद उसने खुद को विस्फोटकों से उड़ा दिया। अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। हेरात के क्षेत्रीय अस्पताल के प्रमुख मोहम्मद आरिफ शाहराम ने बताया, अभी तक हमें 20 शव मिले हैं। इसके अलावा 30 से अधिक घायलों को अस्पताल लाया गया है। इनमें से 10 की हालत बेहद चिंताजनक है। ये थे मोहम्मद आरिफ शाहराम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वेनेजुएला में बढ़ते राजनीतिक तनाव को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला में दिन पर दिन बिगड़ते हालात संकट का शांतिपूर्ण हल निकालने में कठिनाई पैदा करेंगे। वेनेजुएला में विपक्षी नेताओं लियोपोल्डो लोपेज और एंटोनियो लेदेजमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव वेनेजुएला के घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए हैं। बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच मौजूदा संकट का शांतिपूर्ण हल निकलना मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव वेनेजुएला के सभी नागरिकों, खासकर राजनेताओं से अपील करते हैं कि वे तनाव को कम करने के सभी संभव प्रयास करें। ये थे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता डुजारिक के शब्द। सऊदी अरब के अवामिया शहर में बड़ी संख्या में लोग शहर से भाग रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस सियाह बहुल शहर से सऊदी सुरक्षाकर्मी लोगों को भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जबकि अधिकारियों का दावा है कि कुछ लोगों ने सिया आतंकवादियों को अपने घरों में पनाह दी है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। गाम्बिया में कुछ पर्यावरणविदों ने चीन की एक कंपनी को कोर्ट में घसीटा है। पर्यावरणविदों का आरोप है कि ये चीनी कंपनी समुद्र में जहरीला कचरा फेंक रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस जहरीले कचरे की वजह से सैकड़ों मछलियां मर गई हैं और पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि यमन में हैजे से 10 लाख बच्चों के जीवन को खतरा है। संस्था का कहना है कि कुपोषण के कारण इन बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो गई है। यमन में अब तक हैजे से 1300 लोगों की मौत हो गई है और करीब 2 लाख लोग इस महामारी से प्रभावित हैं। जमैका के फर्राटा धावक यूसेन बोल्ट ने कहा है कि डोप में शामिल एथलीटों को रोकना जरूरी है, वरना खेल बर्बाद हो जाएगा। 8 बार के ओलंपिक विजेता बोल्ट इस महीने होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद संन्यास ले लेंगे। बोल्ट लंदन में होने वाली इस चैंपियनशिप के 100 मीटर और 4x100 मीटर रिले रेस में हिस्सा लेंगे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। अमेरिका ने अपनी नीति में बदलाव का संकेत देते हुए अब कहा है कि वो उत्तरी कोरिया के साथ बातचीत से मामले सुलझाने के लिए तैयार है, अगर उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का मोह छोड़ दे तो। अमरीकी विदेश मंत्री ने इस सिलसिले में यह भी कहा कि अमरीका उत्तरी कोरिया में तख्ता पलट नहीं चाहता है। उधर एक सेनेटर ने राष्ट्रपति ट्रंप से मांग की है कि वो चीन पर दबाव बनाने के लिए अमरीका में चीनी कंपनियों के कारोबारी समझौतों पर रोक लगा दें। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
उत्तर कोरिया के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव दर्शाते हुए अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने अमरीका और उत्तर कोरिया के बीच बातचीत की पेशकश की और चीन से मदद की फिर गुहार लगाई।
टू क्रिएट द कंडीशंस वेयर वी कैन हैव अ प्रोडक्टिव डायलॉग।
रेक्स टिलरसन कह रहे थे कि चीन इस तरह मदद कर सकता है कि वो अपने असर का इस्तेमाल करके उत्तर कोरिया को सार्थक बातचीत के लिए राजी कर ले, लेकिन हम नहीं समझते कि बातचीत के साथ उत्तर कोरिया ये समझे कि वो अपने परमाणु हथियार भी रख सकता है तो वो सार्थक नहीं होगा। रेक्स टिलरसन ने उत्तर कोरिया को मुखातिब करके कहा कि आइए हम बैठकर अपने भविष्य के बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि हमारे पास मौजूद अन्य विकल्प ज्यादा आकर्षक नहीं है। टिलरसन ने कहा कि चीन उत्तर कोरिया के साथ अहम आर्थिक संबंध होने के कारण उस देश की सरकार पर अधिक असर डाल सकता है। अमरीका का ये बदला हुआ रुख ऐसे समय में आया है कि जब पेंटागन की ओर से ऐसे इशारे दिए जा रहे थे जैसे अमरीका उत्तर कोरिया पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। दो दिन पहले उत्तर कोरिया द्वारा लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण के जवाब में अमरीका ने कोरियाई प्रायद्वीप पर लड़ाकू विमानों से सैन्य अभ्यास भी किया था। उत्तर कोरिया ने यह भी दावा किया कि अब उसकी मिसाइलें पूरे अमरीका को निशाना बना सकती हैं। मंगलवार को रेक्स टिलरसन ने उत्तर कोरिया को यकीन दिलाने के अंदाज में कहा कि अमरीका उत्तर कोरिया का दुश्मन नहीं है और यह भी कि अमरीका उत्तर कोरिया में मौजूदा शासन को हटाना नहीं चाहता।
We are not your enemy. We do not seek a regime change. We do not seek the collapse of the regime.
टिलरसन का कहना था कि अमरीका उत्तर कोरिया में सेना भेजने का भी कोई बहाना नहीं ढूंढ रहा और न ही दोनों कोरिया को एक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन टिलरसन ने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया अमरीका के लिए अमान्य खतरा पेश कर रहा है और अमरीका को उसका जवाब देना होगा। इस बीच एक रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसी ग्राहम ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे कहा था कि अगर उत्तर कोरिया मिसाइल कार्यक्रम में आगे बढ़ता रहा और अमरीका को खतरा हुआ तो दोनों देशों के बीच युद्ध होगा। उधर सेनेट में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चार्ल्स शूमर ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक खत लिखकर कहा है कि वो अमेरिका में चीनी कंपनियों द्वारा की जा रही बिजनेस डील्स को रोक दें जिससे चीन पर दबाव बनाया जा सके। सत्ता संभालने के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से इस मामले में उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने की उम्मीद कर रखी थी, लेकिन हाल ही में एक ट्वीट करके ट्रंप ने अपनी हताशा जताई थी। राष्ट्रपति ट्रंप चीन की इस बात पर आलोचना कर चुके हैं कि वो उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठा रहा। लेकिन विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि उत्तर कोरिया के मामले में बिगड़े हालात के लिए सिर्फ उत्तर कोरिया ही जिम्मेदार है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
और अब कुछ खबरें भारत से। उत्तर प्रदेश योगी सरकार को बने अभी 4 महीने ही हुए हैं और विपक्षी दल कई मोर्चों पर उसे घेर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार के कामकाज पर पार्टी के नेता ही लगातार सवाल उठा रहे हैं। बिजली व्यवस्था के लिए पिछले दिनों एक कैबिनेट मंत्री ने ऊर्जा मंत्री को सार्वजनिक रूप से चिट्ठी लिखी, तो दूसरी ओर विधानसभा के भीतर एक विधायक ने कहा कि हमारी हैसियत तो विपक्ष के विधायकों जितनी भी नहीं है। सवाल उठता है कि क्या ऐसा वास्तव में हो रहा है या फिर पार्टी के भीतर कथित तौर पर चल रहे अंतर्द्वंद्व का ये नतीजा है। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की यह खास रिपोर्ट।
हम लोग पहले ही इस बात का आग्रह कर चुके हैं कि जिन्हें कानून के राज में विश्वास नहीं वे कृपया उत्तर प्रदेश को अवश्य छोड़ दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब उनके दिन लग चुके हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार स्वच्छ प्रशासन, कार्यकुशलता और जनता के हित में कार्य करने के जहां तमाम दावे कर रही है, वहीं उसकी पार्टी के ही जिम्मेदार नेता और मंत्री उस पर सवाल उठाकर सरकार की कार्यप्रणाली पर संदेह खड़ा कर रहे हैं। सरकार को बने अभी 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन पार्टी के कई नेताओं और विधायकों की तो छोड़िए, एक विभाग के कैबिनेट मंत्री ही दूसरे विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। राज्य के आबकारी मंत्री जयप्रताप सिंह ने पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को पत्र लिखकर उनके इलाके में बिजली व्यवस्था की अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया, तो ये पत्र राजनीतिक जगत में सुर्खियों में आ गया। मंत्री जय प्रताप सिंह कहते हैं,
हमारे यहाँ बिजली टोटली पूरी ध्वस्त हो गई और हमारे माननीय जो विधायक गण हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले भी इस बात में। मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा मंत्री से भी कहा, टेक्निकली हम लोग ने नीचे स्तर पर जो MDs होते हैं कॉरपोरेशन के, जो चीफ इंजीनियर्स होते हैं मंडल के, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, यहाँ तक हम लोग ने बात करके सुलझाने का प्रयास किया, मगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं हो पाया। तो मैंने इसके बारे में पूरे संक्षिप्त में ऊर्जा मंत्री को पत्र लिख के इसका ध्यान आकर्षित किया कि सिद्धार्थनगर में हम लोग क्योंकि कट ऑफ हो जाते हैं नेपाल बॉर्डर होने के नाते, तो वो सप्लाई हमारा बस्ती से पूरी तरह ध्वस्त हो गया था इन प्रॉब्लम के वजह से, इन टेक्निकल प्रॉब्लम से, तो उसको सुधार करने के लिए हमने लिखा था।
ये अकेला मामला नहीं है बल्कि इस तरह के कई मौके आए जब पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाई। हमीरपुर के एक विधायक अशोक चंदेल तो विधानसभा में कह गए कि छोटे मोटे प्रशासनिक अधिकारी तक उनकी बातें नहीं सुनते हैं। वहीं बांदा जिले के एक विधायक राजकरण पिछले दिनों अवैध खनन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि प्रशासन उनकी बातें नहीं सुनता है और वो पार्टी में या मंत्रियों से शिकायत करते हैं तो उनकी सुनी नहीं जाती। यही नहीं, पार्टी के कई सांसद भी इस बारे में अक्सर शिकायत करते रहते हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि कुछ जगह असंतोष हो सकता है, लेकिन उनका कहना है कि ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई होती जरूर है।
अगर कोई सम्मानीय विधायक अपनी जनता की जो अपेक्षाएं उनको अगर सरकार के सामने लाता है तो ये तो लोकतंत्र है और इसका तो हम सम्मान करते हैं। तो हमारे यहाँ जो अगर नीचे जमीन पर किसी सांसद को किसी विधायक को दिक्कत आ रही है तो वह दिक्कत उनके माध्यम से सरकार तक आती है और सरकार उसका समाधान करती है। तो एक बहुत ये तो पॉजिटिव चीज़ें हैं लोकतंत्र के लिए, ये अच्छी चीज़ें होती हैं। ये कोई तानाशाही थोड़ी है कि कांग्रेस में तो किसी को बोलने की आज़ादी नहीं होती, अन्य पॉलिटिकल पार्टियों में तो आप बोल ही नहीं सकते। हमारे यहाँ तो बोलने की आज़ादी है, सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है और सरकार जब समस्याओं की जानकारी सरकार को नहीं होगी तो सरकार किस पर कार्रवाई करेगी।
ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जब राज्य के बीजेपी नेताओं ने सीधे तौर पर सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की है। जानकारों का कहना है कि ऐसा न सिर्फ अनुभवहीनता के कारण हो रहा है बल्कि इसलिए भी कि सरकार में शक्ति के कई केंद्र हैं। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान,
पैरेलल पावर सेंटर जो हैं वो बन गए हैं कई, एक दिल्ली में है अमित शाह चला जो यहाँ से रिमोट कंट्रोल रखते हैं, दूसरा उनका नुमाइंदा है सुनील बंसल वो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है। वो उसकी आजकल जो चर्चा है सबसे ज्यादा की उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग में वो तय करते हैं, वो स्थिति वैसी बनती जा रही है जो मुलायम और अखिलेश के टाइम में थी कि भाई वो चाचा का आदमी है, वो ताऊ का आदमी है, वो नेताजी का आदमी है, वो बेटे का आदमी है। लगभग वही सिचुएशन हो रही है कि जो मेन पावर सेंटर है चीफ मिनिस्टर उससे हट करके पैरेलल पावर सेंटर्स काम करने लग गए हैं और उसमें ये भी नहीं कुछ कर पाते हैं। अच्छा, इनको एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल आइडिया नहीं है योगी को।
बीजेपी की जनप्रतिनिधियों की सरकार से नाराजगी का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुका है और पिछले दिनों राज्य के दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी इसका संज्ञान लिया। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने इस बारे में सरकार के कई मंत्रियों को काफी सख्त हिदायत भी दी। जानकारों का कहना है कि शिकायतों की वजह यदि समस्याएं ही होंगी तो उन्हें सुलझाया जा सकता है, लेकिन यदि वजह कुछ और होगी तो ये बात दूर तक भी जा सकती है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
भारत प्रशासित कश्मीर में लश्कर ए तैयबा के चरमपंथी अबू दुजाना की मुठभेड़ में मौत के बाद तनाव और विरोध प्रदर्शन में एक नागरिक की मौत हो गई। आज अलगाववादियों ने बंद का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी है और स्कूल कॉलेज भी आज बंद रहेंगे। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
कल यानी मंगलवार को दक्षिणी कश्मीर के जिला पुलवामा में लश्कर ए तैयबा के कमांडर अबू दुजाना और उनके एक साथी की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मौत के बाद कश्मीर में एक बार फिर तनाव है। इस मुठभेड़ के दौरान एक स्थानीय नागरिक की भी प्रदर्शनों के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी जबकि कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। अलगाववादियों ने आज कश्मीर में आम नागरिकों की मौतों के खिलाफ कश्मीर बंद बुलाया है। साथ ही प्रशासन ने आज कश्मीर के सभी स्कूलों और कॉलेजों को एहतियाती तौर बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस का कहना है कि अबू दुजाना कश्मीर में सुरक्षा बलों पर किए गए कई सारे हमलों में शामिल रहा है। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुनीर खान कहते हैं,
कोऑर्डिनेशन के साथ ही ऑपरेशन किया जिसमें दो मिलिटन मारे गए, अबू दुजाना और दूसरा आरिफ ललिहार, और उनसे दो वेपन और साथ में मैगजीन्स ग्रेनेड वगैरह रिकवर हुए। कामयाबी इसलिए बड़ी है क्योंकि अबू दुजाना और ये दूसरा काफी नोटोरियस किस्म के मिलिटेंट थे और इलाके में एक दहशत फैलाई थी, तो उस लिहाज से इनका न्यूट्रलाइज होना काफी माना जाता है।
अलगावादियों ने आम लोगों से अपील की है कि वो मारे गए चरमपंथी अबू दुजाना और उनके साथी का आज दोपहर की नमाज के बाद गायबाना नमाज जनाजा पढ़ें। प्रशासन ने अबू दुजाना की मौत के बाद कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद किया है। बीते साल हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के बाद कश्मीर में 6 महीनों तक भारत विरोधी प्रदर्शनों की लहर चली थी। उन प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में करीब 100 लोग मारे गए थे। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
भारतीय कश्मीर का जो 17 वर्षीय युवा चरमपंथी अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया था, उसके परिवार की 3 पीढ़ियां चरमपंथ से जुड़ी हुई हैं। उसके नाना कश्मीर में चरमपंथी कमांडर थे और उसके माता पिता और भाई बहन भी अफगानिस्तान में चरमपंथी संगठन अलकायदा के साथ जुड़े रहे हैं। कश्मीर के बड़गांव जिले में 17 वर्षीय कश्मीरी युवक के नाना से बात की BBC संवाददाता रियाज मसरूर ने, सुनिए उनकी रिपोर्ट।
17 वर्षीय अब्दुल्ला उमेस अल कश्मीरी अलकायदा का युवा चरमपंथी था जो अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में अमरीकी सेना के ड्रोन हमले में मारा गया है। बड़गाम में रहने वाले इनके नाना अब्दुल गनी डार उर्फ अब्दुल्ला गजाली ने इनकी मौत का शोक नहीं मनाया।
परसों का बागा हुआ जमारात का दिन था, मैंने इस तरह मैसेज भेजी थी कि इस तरह उनको यह है, वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। मैंने कहा ताजियत नहीं है, हमारे पास ये शादी है। मैंने घर पर खाना शाना रखा, ये अजीम मौत है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है फिर क्या होगा, तो मगर जाहिर तौर ये अजीम मौत है। मुबारकबादी, मैंने खाना शाना बनाया घर पर।
अब्दुल्ला गजाली खुद भी 1990 में कश्मीर के सशस्त्र आंदोलन का हिस्सा थे। वो कई वर्ष तक तहरीकुल मुजाहिदीन के कमांडर रहे और जेल में इनकी मुलाकात श्रीनगर के एक और चरमपंथी एजाज अहंगर के साथ हुई, तो रिहाई पर उन्होंने अपनी बेटी रुकैया एजाज के साथ ब्याही। एजाज रुकैया को लेकर पाकिस्तान चले गए और वहां अलकायदा के साथ काम करने लगे। 9/11 के बाद अलकायदा के विरुद्ध पाकिस्तानी ऑपरेशन शुरू हुआ तो एजाज ने बीवी और बेटे अब्दुल्ला उमेस को कश्मीर भेजा और खुद वजीरिस्तान चले गए जहां उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब्दुल्ला गजाली कहते हैं कि 2004 में जब उन्होंने अपने पोते अब्दुल्ला उमेस को देखा तो इन्हें लगा कि वो पैदाइशी चरमपंथी है।
उसका बाप जो था वो दीन पसमीने का कलेक्टर था, उसका असर उस पर पड़ा और फिर ये भी सुन लिया है कि मेरा नाना वो यहाँ आया कश्मीर। उसने मिलिट्री वालों को कहा ओ ये मेरे नाना की सब गाड़ियाँ हैं, मैं आपको कत्ल करूँगा, मैं मुजाहिद हूँ। उसने मिलिट्री वालों को यहाँ कहा, मिलिट्री वालों को कहा। उस वक्त 7-8 साल थी।
रुकैया जब उमेस को लेकर वजीरिस्तान पहुंची तो वहां भी पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन शुरू हो गया। एजाज दोनों बीवियों और 6 बच्चों समेत अफगानिस्तान चले गए और पूरा परिवार अलकायदा के साथ जुड़ गया। यह कहानी ऐसे समय पर सामने आई है जब कश्मीर में अंसारुल गजवातुल हिंद नाम से अलकायदा के फ्रंट की घोषणा हुई है। चरमपंथी कमांडरों और अलगाववादियों ने इसे रद्द कर दिया है और लोगों से कहा है कि कश्मीरियों का ग्लोबल एजेंडा नहीं है। इस बीच आज पुलवामा में सेना और पुलिस के साझे ऑपरेशन में लश्कर तैयबा के पूर्व कमांडर अबू दुजाना को साथी समेत मार गिराया गया। इसके बाद घाटी में जगह जगह प्रदर्शन हुए और पुलिस कार्रवाइयों में एक आम नागरिक मारा गया और दर्जनों अन्य घायल हो गए। पुलिस का दावा है कि लश्करे तैयबा से नाराज होकर अबू दुजाना भी अलकायदा से जा मिले थे। गौरतलब है अलकायदा के फ्रंट ने हिजबुल मुजाहिदीन के नाराज कमांडर जाकिर मूसा को चीफ नियुक्त किया था, ताहम जाकिर ने इसकी पुष्टि नहीं की है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये BBC है, आप नमस्कार भारत सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। आइए देखते हैं आज के समाचार पत्रों में किन खबरों को जगह मिली है। दिनेश उप्रेती नजर डाल चुके हैं अखबारों पर, बताइए दिनेश।
जी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से अरविंद पनगड़िया के इस्तीफे की खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पनगड़िया ने कहा है कि उन्होंने 2 महीने पहले ही इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दिया था। उनका कहना है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी उन्हें और एक्सटेंशन नहीं दे रही है, हालांकि वो 31 अगस्त तक अभी इस पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा कश्मीर के चरमपंथी संगठन लश्कर ए तैयबा के कमांडर अबू दुजाना के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जाने की खबर भी तकरीबन सभी अखबारों की सुर्खियों में है। हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस ने भाजपा सांसदों के राज्यसभा से गैरहाजिर रहने पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की नाराजगी की खबर को पहले पन्ने पर छापा है। कल BJP संसदीय बोर्ड की बैठक थी जिसमें शाह ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताई। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि जब पार्टी व्हिप जारी करती है तो सदस्यों को सदन में मौजूद रहना चाहिए और पार्टी अध्यक्ष ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने सदस्यों से कहा है कि ऐसा दोहराया न जाए। हिंदुस्तान टाइम्स ने राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर कांग्रेस समेत कई अन्य पार्टियों के आपत्ति को पहले पन्ने पर जगह दी है। बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसेगी सरकार, प्रॉपर्टी सौदों के लिए आधार होगा अनिवार्य, ये सुर्खी है इंडियन एक्सप्रेस की। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने की एक तस्वीर ने मेरा ध्यान खींचा है रेहान जी। फोटो का कैप्शन है मूविंग हाउस। ये तस्वीर है एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू के सरकारी आवास 30 APJ अब्दुल कलाम की, जिसमें मजदूर सामान की पैकिंग में जुटे हैं और नायडू इसकी निगरानी कर रहे हैं। द स्टेट्समैन ने पूर्वोत्तर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 2350 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा को पहले पन्ने पर छापा है। सरकार की LPG गैस सिलेंडर के दाम हर महीने 4 रुपये बढ़ाने की योजना है, इस खबर को कई अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने लोकसभा में जबरदस्त विरोध जताया था और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की थी।
बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश उप्रेटी आपका। मराठी का एक गाना भारत में अलग अलग बोलियों में वायरल होने के बाद अब सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच गया है। कुछ दिनों पहले ब्रहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर तंज करते हुए रेडियो जॉकी मलिश्का के एक वीडियो में ये गाना विवाद का विषय बन गया था, लेकिन अब पड़ोसी मुल्क में भी इस गाने का अलग वर्जन बना लिया गया है और ये वर्जन वहाँ की सियासी उठापटक पर है। पाकिस्तान में इस गाने के जरिए नवाज शरीफ और इमरान खान पर चुटकियां ली गई हैं। गाना बनाया है कराची वाइज ग्रुप ने, मंसूर कुरैशी और उनके कुछ दोस्तों ने 2014 में ये ग्रुप बनाया था। मंसूर कुरैशी से BBC संवाददाता प्रसन्ना जोशी ने बात की।
इम्मो हमें आप पे भरोसा, सही था। आपका मुद्दा भी देखो फिर वही था। पीछे बंदा भी आपके कई था। अपने PM का पेट हुआ गोल। इम्मो यहाँ सारे बोले मीठे बोल।
मंसूर जी, तो पहले तो बताइए आइडिया कैसे आई इस गाने के बारे में।
सर, गाने के बारे में आइडिया मैं अगर क्रेडिट दूंगा तो वो मेरा टीम का मेंबर है, बेसिकली मेरा लीड एक्टर है कराची वाइंस में सलमान, जो कि इस तरह की चीजें बड़ी अच्छी लिखता है। और सोनू सॉन्ग का काफी पाकिस्तान में ट्रेंड था, हमने देखी वीडियोस, काफी डिफरेंट वर्जन्स देखे, तो हम लोग काफी दिन से कुछ सोच रहे थे कि क्योंकि हमारा जो बेसिकली हम लोग सोशल मीडिया कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं, तो हमारा काम है कि ट्रेंड्स को फॉलो करना और उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है ना मजे की चीज बना के लोगों को एंटरटेन करना। तो बस ये एक ट्रेंड चल रहा था तो हमने सोचा हुआ था उस पर, काफी दिन से कुछ कर रहे थे लेकिन चीज क्लिक नहीं हो रही। तो बस लकीली यहाँ पाकिस्तान में कुछ एक इस तरह का जरा 2 दिन से न्यूज में कुछ चल रहा था, तो उसके ऊपर हमने कुछ ना कुछ सोचा और हमने बस एक बनाया। बिलीव करें कि ये 1 घंटे के अंदर हमने बनाया, सिंगल शॉट 1 go में इसको शूट किया, पानी के मतलब स्विमिंग पूल में हमने अपलोड किया और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स आ गया।
जिन्होंने ये पूरा गाना लिखा तो क्या उन्हें क्या पता था, कोई आइडिया थी कि बेसिक गाना कहाँ से आया है?
देखिए एक्चुअली हमारा ना, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा बैकग्राउंड, हम लोग पिछले 3 साल से ये काम कर रहे हैं जो फनी वीडियोस बनाते हैं, डिफरेंट वाइंस जिसको आप कहते हैं ना, हमारा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं हमेशा की तरह क्या चीज ट्रेंडिंग है या क्या चीज टॉपिक है, नेक्स्ट क्या ऑब्जर्वेशन है जिसके ऊपर हमें वीडियो बनानी, और मतलब डिस्कशन चल रही थी तो 2-3 लड़कों ने बताया कि यार इस तरह का ना गाना चल रहा है बड़े मजे का और ये बड़ा ट्रेंड में, तो फिर हम सब ने मिलकर देखा और फिर हम सब ने उस पर कुछ ना कुछ सोचना शुरू किया। तो बस हमारा थोड़ा सा सियासत में जरा यहाँ पे 2-3 दिन जरा ब्रेकिंग न्यूज तो वो जब चली तो उस पे हमें फिर एक आइडिया आया और हमने कहा चलो इस चीज को बनाते हैं इस तरीके से।
इम्मो हमें आप पे भरोसा, सही था। अपनी मेहनत पे आप फिर अड़ गए। पनामा से देखो सारे गड़ गए। अदालत में केस हुआ गोल। इम्मो यहाँ सारे बोले मीठे बोल। इम्मो हमें आप पे भरोसा, सही था।
आपकी इस गाने में इमरान खान को जरा ज्यादा तवज्जो है, उसकी कोई खास वजह थी?
सर देखिए, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और ना ही हमें किसी ने पैसे दिए गए इस चीज के लिए। देखिए हम हैं यूथ के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमें हर जगह बैलेंस लेके चलना पड़ता है। ये चीज क्योंकि सोशल मीडिया पे हिट थी, इमरान खान को सब जो है ना मतलब वो कर रहे थे, तो हमने एक सपोर्ट में क्या मतलब एक रैंडमली हमने एक चीज बना दी।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग शरीफ हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इमरान खान की पार्टी, तो इनके द्वारा इनके जरिए किस तरह से रिस्पॉन्स था?
सही बात, मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स की, तो आई एम श्योर कि उनको थोड़ा सा बुरा लगा और उन्होंने काफी बुरा भला हमें कहा, तो अच्छा। वो चीज देखें एक बैलेंस चल रही थी, सोशल मीडिया है यहाँ पे सबको अपनी जो है ना कहने का हक होता है, हमारा तो मकसद ही उस पे लिखा हुआ है कि सिर्फ हम एंटरटेन करते हैं।
कराची वाइंस के मंसूर कुरैशी से बात कर रहे थे प्रसन्ना जोशी। कनाडा की द कोमोक्स वैली में हर साल द ब्रिटिश कोलंबिया सी फूड एंड शेलफिश फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। इस बार वहां भारतीय शेफ्स और उनके द्वारा बनाए गए व्यंजनों ने विदेशी शेफ्स और दर्शकों के बीच खूब धूम मचाई। एक रिपोर्ट के साथ अमित भास्कर।
कनाडा के वैंकूवर द्वीप समूह के बीचों बीच बसा है द कोमोक्स वैली, जहां हर साल की तरह इस साल भी ब्रिटिश कोलंबिया सी फूड एंड शेलफिश महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव में हर साल ब्रिटिश कोलंबिया के शेफ्स अपने खास समुद्री भोजन का प्रदर्शन करते हैं। इस साल इस महोत्सव में भारतीय शेफ्स की भी काफी धूम रही। इस महोत्सव से जुड़े नैथन फॉग।
द बीसी सी फूड फेस्टिवल इज ए वीक लॉन्ग फेस्टिविटी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वीकेंड व्हिच इज
ब्रिटिश कोलंबिया सी फूड फेस्टिवल हफ्ते भर का प्रोग्राम होता है, जिसका पहला वीकेंड बीसी सी फूड प्रोडक्ट्स के खरीदारों को तो दूसरा वीकेंड उपभोक्ताओं को समर्पित होता है। समंदर के किनारे होने वाले हफ्ते भर के इस महोत्सव में करीब 2,500 लोग आते हैं।
इस महोत्सव में ब्रिटिश कोलंबिया के शीर्ष के सभी शेफ ने हिस्सा लिया, जो कस्तूरी, मसल, स्कैल्प्स, क्लैम, मछली आदि सी फूड बनाने में माहिर हैं। इस महोत्सव में भारतीय शेफ ने भी हिस्सा लिया। चिंदी वरद राजुलू, सिद्धार्थ, गणेश उन शेफ में से हैं जिन्होंने पूरे महोत्सव के दौरान अपने स्वादिष्ट रेसिपी से महोत्सव में लोगों को अपनी ओर खींचे रखा। करीब 20 सालों तक कनाडा में रहने के बाद भारत में आकर बसने वाली चिंदी वरद राजुलू की खासियत है उनके व्यंजन में इस्तेमाल किए जाने वाले खास तरह की रेसिपी, जो हृदय के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। चिंदी।
For the BC Seafood Festival, I made a South Indian fish curry in a pepper masala.
BC Seafood Festival के लिए मैंने काली मिर्च मसाले के साथ एक दक्षिण भारतीय फिश करी बनाई। इसके लिए मैंने कोहो सैल्मन फिश का इस्तेमाल किया, फिर इसे केरल के पराठों के साथ परोसा गया।
केरला पराठा।
चिंदी बताती हैं कि भारतीय खाना सबसे अलग क्यों होता है।
Indian cuisine is definitely my favorite cuisine. With so much migration and ingredients being available in all corners of the world.
भारतीय व्यंजन निश्चित रूप से मेरा पसंदीदा व्यंजन है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में इसे बनाने की सामग्री उपलब्ध होती है। भारतीय मसाले अब दुनिया के मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ने लगे हैं। भारतीय व्यंजन बनाने में मसालों, टेक्सचर आदि का संतुलन बनाए रखें तो इसकी लत लग जाती है।
इस महोत्सव को देखने और यहाँ बनने वाले तरह तरह के व्यंजनों का मजा लेने लोग कई देशों से आते हैं। सभी को भारतीय शेफ्स द्वारा बनाए गए डिश सबसे अलग लगे और उन्होंने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की। अमेरिका में रहने वाली सिंडी लॉज।
द ब्रिटिश कोलंबिया सी फूड फेस्टिवल एंड एक्सपो वाज एन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड अ ग्रेट
बीसी सी फूड फेस्टिवल और एक्सपो मेरे लिए एक शैक्षिक अवसर रहा, जहाँ समुद्री मछलियों और समुद्री भोजन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने पहली बार इंडियन शेफ द्वारा बनाए गए डिश को ट्राई किया, जो कमाल का था।
टोरंटो में रहने वाले रेमंड कुआ ट्रैवलिंग फूडी नाम से एक ब्लॉग चलाते हैं और जिसके लिए वे दुनिया भर में अलग अलग रेसिपी को ट्राई करते हैं।
I really enjoy the BC Shellfish and Seafood Festival because I love seafood.
मैं वास्तव में BC सी फूड फेस्टिवल और समुद्री भोजन उत्सव का आनंद लेता हूँ, क्योंकि मुझे सी फूड पसंद है। हमारी दुनिया पानी के माध्यम से जुड़ी हुई है, इसलिए यह देखने में आश्चर्यजनक है कि दुनिया के अलग अलग हिस्से में समुद्री खाने की तैयारी कैसे अलग अलग तरीके से की जाती है। इस फेस्टिवल में विशेष रूप से मैंने भारत के विभिन्न शेफों द्वारा बनाए गए समुद्री खाने को टेस्ट किया। मुझे चिंदी के कोहो सैल्मन, वो भी मसालों के साथ, बहुत पसंद आए। ये इसलिए भी आश्चर्यजनक था क्योंकि उन्होंने हमारे सामने पराठा तैयार किया था।
करीब एक हफ्ते तक चलने वाले इस महोत्सव में भारतीय शेफ्स ने न सिर्फ अपनी छाप छोड़ी बल्कि लोगों को अपनी रेसिपी से मंत्रमुग्ध भी कर दिया। बीबीसी हिंदी के लिए मैं अमित भास्कर, द कोमोक्स वैली, कनाडा से।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि उनका देश उत्तर कोरिया के साथ बातचीत करना चाहता है और किम जोंग उन को सत्ता से बेदखल करने का उसका कोई इरादा नहीं है। अफगानिस्तान के हेरात शहर में कल शाम एक शिया मस्जिद में हुए धमाके में कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई है। धमाके में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वेनेजुएला में दिन पर दिन बिगड़ते हालात मौजूदा संकट का शांतिपूर्ण हल निकालने में कठिनाई पैदा करेंगे। सऊदी अरब के शिया बहुल अवामिया शहर में बड़ी संख्या में लोग शहर से भाग रहे हैं। गाम्बिया में कुछ पर्यावरणविदों ने चीन की एक कंपनी को समुद्र में जहरीला कचरा फैलाने पर कोर्ट में घसीटा है। बीबीसी समाचार।
समय आ पहुंचा है आपसे विदा लेने का। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।